लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। पुत्रो, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मेरे पिता ने मुझे यह कहते हुए शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन मिलेगा। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के चौथे अध्याय के प्रथम पांच पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने चौथे अध्याय के प्रथम नौ पदों की व्याख्या की थी। यह अध्याय बुद्धिमान राजा सुलेमान द्वारा पुत्र को दिया गया परामर्श है। बुद्धिमान पिता अपने पुत्र से कहता है कि धर्मी का मार्ग उस उषाकाल के सदृश है जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे तेज होता जाता है, जबकि दुष्ट ऐसे लोगों के समान होते हैं जो अनवरत और भी गहरे अंधकार में ठोकर खाते रहते हैं। इसीलिए उसका परामर्श है कि व्यक्ति इन बातों को अपने हृदय में संजो कर रखे, क्योंकि इन्हीं से वह स्वस्थ होगा, इन्हीं से वह मन की चंगाई प्राप्त करेगा और उसे अंतर्दृष्टि मिलेगी, प्रज्ञा से उसे जीवन मिलेगा। अपने माता पिता के अनुभवों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर और उनकी बातों को सुनकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे। याद रहे कि हर युग में और समाज के हर कोटि पद और हर श्रेणी के बुद्धिमान एवं धर्म परायण लोग इस बात से सहमत हैं कि सच्चा ज्ञान आज्ञाकारिता में निहित रहा करता है, यही सुख का स्रोत है। फिर चौथे अध्याय के छह से लेकर नौ तक के पदों में पिता पुत्र से कहता है, प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी, उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देखरेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो, इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी, इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी, यह तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि जो लोग शिक्षित होते हैं, जिन पर समाज के निर्देशन और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी रहा करती है, वे वास्तव में शिक्षा और ज्ञान के अर्थ और इसके महत्व को तो समझते हैं, तथापि इसे केवल अपने परिवारों और अपनी संतानों के लिए उपयोगी मानते हैं। अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वे समाज में प्रतिष्ठित हों तथा उनका पद ऊंचे से ऊंचा हो, यही उनकी मनोकामना और उनके प्रयास हुआ करते हैं। ऐसा इसलिए कि व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थ परत होता है। वह पहले अपना भला देखता है और फिर अन्यों की सोचता है। हालांकि बुजुर्गों ने कहा है कि उदारता को अपने ही घर से शुरू होना चाहिए, तथापि अन्यों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उदारता घर से शुरू अवश्य हो, किंतु इसे वहीं पर खत्म नहीं हो जाना चाहिए। यही है यथार्थ प्रज्ञा, यही है सद्बुद्धि, जिसे हासिल करने का सूक्ति ग्रंथ हम सबसे आग्रह करता है।
प्रभु हम आए तेरे द्वार,
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 दर्शन करने तेरे द्वार,
दर्शन
अपनी इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए चौथे अध्याय के 10 से लेकर 13 तक के पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, पुत्र सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आयु लंबी होगी। मैं तुम्हें प्रज्ञा का मार्ग दिखाता और सन्मार्ग पर ले चलता हूँ। तुम आगे बढ़ोगे तो बाधा नहीं होगी, तुम दौड़ने लगोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। इस शिक्षा को ग्रहण करो, इसे कभी मत छोड़ो। श्रोताओ, इन पदों से स्पष्ट है कि बुद्धिमान राजा और पिता सुलेमान अपने पुत्र की परवरिश उचित रीति से कर रहे थे। वे पुत्र के प्रति पिता की जिम्मेदारी को भली प्रकार निभा रहे थे। इन्हीं का आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सूक्ति ग्रंथ का लेखक युग युगांतर तक के स्त्री पुरुषों से आग्रह करता है कि वे अपनी संतानों की शिक्षा में कोई कसर न छोड़ें। वे अपनी संतानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, ताकि उनके पुत्र पुत्रियां प्रज्ञा प्राप्त कर सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। वे धर्म परायण और सदाचारी बनकर समाज में अपना अनुपम योगदान दे सकें। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, बुराई और अकर्मण्यता स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है और दुष्टों के दिनों को छोटा कर देती है, जबकि सच्चा धर्म और संयम उन्हें दीर्घकालीन बना देता है। हमारे रोगों का मुख्य भाग आलस्य, अकर्मण्यता और उच्छंकल वासनाओं से उत्पन्न होता है। धर्म संयमी आदतों को बढ़ावा देता, यह बुरी वासनाओं को नष्ट करता तथा आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है और इस प्रकार कई बीमारियों को रोककर जीवन को अनिवार्य रूप से दीर्घकालीन और रचनात्मक बना देता है। श्रोताओ, हम प्रायः बच्चों की परवरिश करते समय उन्हें विश्व में सफल होने की शिक्षा देते हैं। उनसे यही कहा करते हैं कि वे मेहनत करें और साहस पूर्वक आगे बढ़ते जाएं, अपनी जीवन दौड़ में अग्रणी रहें। हम उन्हें दौड़ना सिखाते हैं, ठोकर खाना भी और पराजित होना भी, किंतु क्या हम इसके साथ साथ उन्हें प्रज्ञा का पाठ पढ़ाते हैं? क्या हम उन्हें ईश प्रज्ञा का मर्म समझाते हैं? इस पर तनिक ध्यान दें, क्योंकि किताबी ज्ञान पाना और समाज में ऊंचा पद पा लेना ही सब कुछ नहीं होता, अपितु व्यक्ति में अन्यों के प्रति प्रेम, उदारता और करुणा के भाव भी होने चाहिए। उनमें माता पिता के प्रति आदर और आज्ञाकारिता का भाव होना चाहिए। उनमें ईश नियमों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यही है सच्ची प्रज्ञा, यही है सच्चा ज्ञान। सूक्ति ग्रंथ में पिता पुत्र से कहता है, इस शिक्षा को ग्रहण करो, इसे कभी मत छोड़ो, इसे संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। यहाँ एक बार फिर बुद्धिमान राजा सुलेमान प्रज्ञा के महत्व को रेखांकित करते हैं। हमें प्रेम और ज्ञान की खोज को जीवन या मृत्यु का मामला मानना चाहिए। हमें ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जीवन में सफल हो सकेंगे। बाइबल आचार्य ब्रिजिस का कहना है, शिक्षाओं और मार्गदर्शन से सीख पाने का अनुप्राणित आह्वान यही दर्शाता है कि मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखना एक संघर्ष है। वास्तव में हमारी पकड़ तब कमजोर हो जाती है जब हम केवल नवीनता के कारण ज्ञान में रुचि रखते हैं।
प्रभु हम आए तेरे द्वार,
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 दर्शन करने तेरे द्वार,
दर्शन करने तेरे द्वार,
प्रभु हम आए तेरे द्वार। दर्शन दो पिता हमारे, दर्शन दो
पिता हमारे, दर्शन दो पिता हमारे, दर्शन दो,
प्रभु हम आए तेरे द्वार,
प्रभु हम आए।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 14 अक्टूबर को अस्पताल के दवाखानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं दवाई सेवा हेतु इताली समाज के 150 सदस्यों से वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, सम्मेलन सबसे पहले आपके लिए विचार विमर्श करने का अवसर है, किंतु यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के महत्व को पुनः पुष्ट करने का भी समय है, ताकि एक देश के आम हित एवं सामाजिक विकास जैसे आवश्यक तत्वों को सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में उनकी प्रतिबद्धता को जारी रखने हेतु संत पापा ने तीन रास्ते बतलाए। उन्होंने कहा, भले समारी के दृष्टांत में सराय के मालिक से आग्रह किया गया कि वह घायल व्यक्ति को जगह दे एवं उसे अपने पास तब तक रखे जब तक कि समारी व्यक्ति न लौट जाए, इस पात्र में हम अस्पताल के दवाखाना के काम के दो महत्वपूर्ण आयाम को देख सकते हैं, दिनचर्या और छिपी सेवा, जिसके लिए धीरज, दृढ़ता और यथार्थता की आवश्यकता है। वे लोगों के सामने बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, यही कारण है कि वे प्रार्थना एवं स्नेह के साथ प्रतिदिन के जीवन की पौत्रता को जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रार्थना और प्रेम के बिना उनका जीवन नीरस हो जाएगा। अस्पताल के दवाखाना विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है उनकी व्यावसायिकता। चिकित्सा के साथ साथ दवाखाना के कर्मचारी भी शोध कार्य में भाग लेते हैं और मरीजों के सीधे संपर्क में रहते हैं, अतः उन्हें रोग और रोगी को समझना, दवाओं और खुराक को निजीकृत करने की क्षमता रखना और कभी कभी सबसे जटिल नैदानिक स्थितियों से निपटना पड़ता है। दवाखाना का कर्मचारी वास्तव में सभी प्रभावों को ध्यान में रखने की क्षमता रखता है, वह कभी कभी सुविधाओं के आधार पर बीमार व्यक्तियों से मिलता है। तीसरा रास्ता है पेशा का नैतिक आयाम। इसके भी दो भाग हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत स्तर पर दवाखाना का हर कर्मचारी औषधीय पदार्थों का उपयोग करता है जो विषाक्त हो सकता है, अतः एक कर्मचारी को हमेशा सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि वे मानव जीवन की सेवा में रहते हैं। संत पापा ने सदस्यों को सचेत किया कि उनके पेशे को फेंकने की संस्कृति प्रभावित न करे, जिसके लिए उन्हें हमेशा सावधान रहना है। उन्होंने कहा, पिता ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम पृथ्वी को धन की ओर ना ले चलें, बल्कि स्त्री और पुरुषों की ओर ले चलें, क्योंकि हमारे लिए खतरा है कि लाभ और उपभोक्तावाद के देवता के लिए लोग बलि ना हों। यही फेंकने की संस्कृति है, इसका प्रभाव पर्यावरण पर और उससे भी बढ़कर मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। संत पापा ने याद दिलाया कि संसाधनों का प्रबंधन और दवाखाना में काम करने वाले हरेक कर्मचारी के हाथों में दी गई चीजों को बर्बाद न करने पर ध्यान देना न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने दवाओं को खरीद और भंडारण, सही उपयोग और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सावधानी बरतने की सलाह दी। और आज के ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि सिनट एक आध्यात्मिक आत्मपरक की प्रक्रिया है। उन्होंने 14 अक्टूबर के ट्वीट संदेश में लिखा, सिनट एक आध्यात्मिक आत्मपरक की यात्रा है जिसको आराधना में, प्रार्थना में और ईश्वर के वचन के साथ संवाद में की जाती है। संत पापा फ्रांसिस ने आइडिया फाउंडेशन एवं लोकप्रिय अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के संघ की 57वीं सभा के अवसर पर संघ के सदस्यों को एक वीडियो संदेश भेजकर उनके बीच वार्ता की सराहना की। सभा की विषय वस्तु है, आइए हम एक सतत अर्जेंटीना का निर्माण करें। यह 13 से 15 अक्टूबर तक बॉयनस आयरस में जारी है। इस साल की सभा का उद्देश्य है देश के बेहतर सामाजिक एकीकरण, विकास और तरक्की के मद्देनजर निजी रोजगार पर विचार करना। आइडिया अर्जेंटीना में व्यापार विकास की संस्था है। इसने 1974 से ही हर साल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेताओं, सरकार अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के नेताओं और व्यापार संघ के नेताओं को एक साथ लाया है ताकि नए विचारों पर बहस किया जा सके और वास्तविकता में बदलाव लाने के लिए नेताओं को कदम उठाने हेतु प्रेरित कर सके। संत पापा ने कहा, मैं विचार के लिए जगह की सराहना करता हूं, जिसको आइडिया फाउंडेशन और लोकप्रिय अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के संघ ने प्रस्तावित किया है। उन्होंने उद्यमियों की बुलाहट की याद दिलाते हुए कहा कि यह रचनात्मक रूप से धन का उत्पादन करने और उत्पादन में विविधता लाने की कोशिश करता है, साथ ही नौकरी के लिए अवसर उत्पन्न करता है। संत पापा ने काम की प्रतिष्ठा की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि काम को प्रतिष्ठा कौन देता है? जिसके पास नौकरी नहीं है वे कुछ चीज की कमी महसूस करते हैं, वे उस प्रतिष्ठा की कमी महसूस करते हैं जिसको नौकरी प्रदान करती है। संत पापा ने कहा, कार्य मानव प्राणी की प्रतिष्ठा को प्रकट करता और बढ़ाता है, उसे ईश्वर प्रदत्त क्षमता में विकसित कराता, संबंध स्थापित करने में मदद देता, उससे इस दुनिया की देखभाल एवं विकास करने में ईश्वर के सहयोगी होने का एहसास दिलाता है, उससे समाज के लिए उपयोगी और उन लोगों के लिए एकजुटता का अनुभव कराता है जिनकी वे परवाह करते हैं। यही कारण है कि कठिनाइयों और परेशानियों के परे कार्य की परिपक्वता का मार्ग है व्यक्ति होने का एहसास, जो श्रेष्ठ सपनों को पंख देता है। डबलिन के महाधर्मदर्श डेरमोट फारेल द्वारा 12 अक्टूबर को प्रस्तुत प्रेरित पत्र पृथ्वी की पुकार एवं गरीबों की पुकार में दो मुख्य बिंदुओं, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के नुकसान पर प्रकाश डाला गया है। डबलिन के महाधर्मदर्श ने प्रेरित पत्र में लिखा है, हमें स्वीकार करना है कि जलवायु संकट मौजूद है। यह सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमारा ग्रह कर रहा है। यह एक मुद्दा है जो इस पीढ़ी की परिभाषा देती है और जिसका समाधान थोड़े दिनों के प्रयास या सहज रास्तों से संभव नहीं है, क्योंकि अब भी लंबा रास्ता चलना है। साथ ही साथ जलवायु संकट सिर्फ जलवायु से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बहुस्तरीय संकट है और हमारे जीवन के सभी आयामों को प्रभावित करता है, जैसे आवास, स्वास्थ्य, असमानता, पलायन, अर्थव्यवस्था, जल की गुणवत्ता, मिट्टी और हवा। संक्षेप में, इस संकट का मानव चेहरा है जिसका तत्काल और लंबा प्रभाव हो सकता है, जो कमजोर लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सोमवार को उत्तरी नाइजीरिया के कडुना क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी से अपहृत 3 सेमिनरी के छात्रों को रिहा कर दिया गया है। कफन चंथम प्रांत के चांसलर ने बुधवार को एक बयान में उनकी रिहाई की पुष्टि की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।